इसके साम कृष्ण दोष हुए आरती घर वाली टुडे दी मंगल आरती एंड गोइंग टू डू भागवत क्लास आल्सो
हरि बोल
ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयं उदीरये
नष्टपायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ओके आई कैन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इफ समबडी हैव आवर एडवांस पोथी So you can bring Srimad Bhagavatam, Canto First, Chapter 7, Verse Number 2.
Canto 1, Chapter 7, Verse Number
2. Everybody?
172.
Fifth Canto.
सुतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रासैति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः सुतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सम्यप्रासैति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः सुतोवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रासैति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः एनीबडी लाइक टू चैंट
सुतोवाच
ब्रह्मनाद्यां सरस्वत्यां
आश्रमः पश्चिमे तटे ऋषीणां सत्रवर्धना
सूत उवाच
ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्यं
आश्रमः
पश्चिमे तटे सम्यप्राश इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धन
सूत उवाच ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्यं आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक्प्राश इति
प्रोक्तः
ऋषीणां
सत्रवर्धना सूत उवाच
ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्यां
ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्यां
आश्रमः पश्चिमे तटे
सम्यप्राश इति प्रोक्ता
ऋषीणां सत्रवर्धनः
सूत
उवाच ब्रह्मनाद्यं
सरस्वत्यां
ब्रह्मराज्यां सरस्वत्यां
आश्रमा पश्चिमे तटे
आश्रमा पश्चिमे तटे
प्राशा इति प्रोक्ता
सम्यक् प्राशा इति प्रोक्ता
नाम सत्र वर्धना
ऋषीणां सत्र वर्धना
सूत उवाच
सूत उवाच
ब्रह्मनित्यां सरस्वत्यां
ब्रह्मनित्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे सम्यक् प्राश इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्र वर्धना
सूत उवाच
सूत उवाच
ब्रह्मनाद्यां
सरस्वत्यम् आश्रमा पश्चिमे तटे
सम्यक् प्राश इति प्रोक्ता
ऋषीणां
सत्र वर्धना
सूत उवाच
आश्रमा पश्चिमे तटे
सम्यक् प्राश इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्र वर्धना
सूत उवाच
ब्रह्मराजं सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे
सम्यक् प्राश इति प्रोक्ता
ऋषीणां सत्र वर्धना
सूत उवाच
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां
आश्रमा पश्चिमे तटे
सम्यक् प्राश इति प्रोक्ता
ऋषीणां सत्र वर्धना
वाड्मनि
श्री सुतो वाच
श्री सुत गोस्वामी सेठ
ब्रह्मनद्यां
ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंटीमेटली रिलेटेड विथ वेदस
ब्राह्मणस
सेंट्स एंड द लॉर्ड सरस्वत्यां
सरस्वती
आश्रम कटेज फॉर मेडिटेशन पश्चिमे ऑन द वेस्टर्न
साइड
तटे ऑन द बैंक सम्यप्राशः द प्लेस नेम्ड सम्यप्राश इति दस प्रोक्तः सेड टू बी ऋषीणां of the sages satravardhana that which enlivens activities translation and purport by his divine grace bhaktivedanta swami sri prabhupada translation sri suta said on the western bank of the river saraswati which is intimately related with the Vedas
there is a cottage
for meditation at samyaprasa
which enlivens
the transcendental activities of the sages purport by Srila Prabhupada for spiritual advancement of knowledge a suitable place and atmosphere as definitely required try to hear attentively what Prabhupada is saying for spiritual advancement of knowledge a suitable place and atmosphere are definitely required the place on the western bank of the Saraswati is specially suitable for this purpose and there is the ashram of Veda Vyasa at Samyaprasa. Srila Vyasadeva was a householder, yet his residential place is called an ashram. An ashram is a place where spiritual culture is always foremost. It doesn't matter whether the place belongs to a householder or a mendicant. The whole Varnasrama system is so designed that each and every status of life is called an ashrama. This means that spiritual culture is the common factor for all. The brahmacharis, the grihasthas, the vanaprasthas and the sannyasis all belong to the same mission of life, namely realization of the Supreme. Therefore, none of them are less important as far as spiritual culture is concerned. The difference is a matter of formality and the strength of renunciation. The sannyasis are held in high estimation and the strength of practical renunciation. Om Ajnanam Nirandhasya Jnanam Nirandhasya Chakra Yudhav Yudhasmi Sikrovi Sri Chaitanya Mahanishtam Sthartam Yeh Bhutale Swayam Vatakadam 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 Vande Ram Sri Guru Sri Tadakamalam Sri Guru Nubashmahansa Sri Rupam Sakajatam Sahaganam Raghunatham Nikantam Sajivam Sadetam Sarakrutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Sri Radha Krishna Padaya Sahagana Lalita Sri Visakhavantam Sri Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Mukare Srimate Bhakti Vedanta Swamini Priyamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Srinivasi Parsvata Desha Karane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srinivasadi Gaurava Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today one of the most auspicious day. You must know it that today is the Sri Jagannath Baladevi Sudra Sudarsana's return Rath Jatra day. Bahura Dasami. Sri Jagannath was in Sri Mandira. So on the day on boarding on his car, Ratham. So all three Tasnandi Ghosar Devadalanana Taladvaja, Sri Jagannath Baladeva Subhadra, they went to Sundarachalam, which is considered as Vrindavan. It's Banam, forest, Ban. So he was there for 1 week in the Banam, in the forest. Today he is going back from the jungle to his own abode, to Sri Mandira, where he eternally resides. So similarly, you all in your jatra, till now we are in Banakhetra, different Bana, river, river and mountains, hills, all this. Today our team is returning to the Khetra, to the Narayana Khetra, the Sri Khetra, Sri Badri Ashram. It is said that in Bharatvarsha there are 4 dhamas. In west, east, north, south, there are 4 dhams, chaturdham. All of them are called dham. Rameswar dham, Dwarika dham, Puri dham. But Badrika is not dham. Badrika is ashram. So you should know what is the difference between dham and ashram. Why the Badrika, Badrika Ashram is not called Dham? It is one of the Dham. It is the foremost, the first in Satya Yuga. First Khatra is Badri Khatra. But it is called Ashram, Badrika Ashram. Because Shrama means labor. You know Shramik? Shram means labor. And Ashram, A means together. A means together. When you in any word you put a as prefix, then it becomes a congregation. So ashram means doing labor together. So this is called ashram. Any place where all the residents together will do attend their labor for a common purpose, for a mission. That is called ashrama. So that's why Prabhupada pointed out here that even Srila Vyasadeva was a householder. Okay. तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतवर्ष में चार धाम है. चार धाम आप जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. पूर्व में नीलाचल जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका धाम, दक्षिण में रामेश्वर धाम, उत्तर में बद्रिकाश्रम. तो मैं ही कहता था कि चारों जगह में तीन को तो धाम बोलते हैं, एक को आश्रम बोलते हैं, बद्रिकाश्रम. तो आश्रम और धाम में अंतर क्या है? आश्रम शब्द का अर्थ से दो शब्द है, एक आ एक श्रम. श्रम का मतलब है श्रम करना, मतलब परिश्रम करना. परिश्रम समझते हैं ना, श्रम. श्रम मीन्स लेबर, कुछ काम करना. और आ मतलब मिल करके, जहाँ मिल करके परिश्रम किया जाता है उसको आश्रम कहते हैं. तो प्रभुपाद जी ने यहाँ कहते हैं कि व्यासदेव यद्यपि एक गृहस्थ थे, फिर भी उनका घर को आश्रम बताया जाता था. हम तो सोचते हैं जहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं वो आश्रम है. अब आश्रम में रहते हैं, इवर आश्रम आइट आई एम ए गृहस्थ, इवर आश्रम आइट आई एम ए गृहस्थ. आप तो आश्रम में रहते हैं, हम तो घर में रहते. प्रभुपाद बोलते नो, व्यासदेव जी गृहस्थ, व्यासदेव गृहस्थ थे लेकिन फिर भी उनके घर को बद्री का आश्रम है. आश्रम है तटे, आश्रम शब्द भागवत में सुधु गोस्वामी बोले क्यों आश्रम में रहते थे. क्यों बोले, इससे पता चलता है कि हमारा वैदिक कल्चर जो है वो हमको सिखाता है कि प्रत्येक स्तर के व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी क्यों ना हो, चाहे गृहस्थ क्यों ना हो, चाहे वानप्रस्थ क्यों ना हो, चाहे सन्यासी क्यों ना हो, सभी के लिए लक्ष्य एक ही है, कॉमन पर्पस, मिशन ऑफ लाइफ सभी के लिए एक होना चाहिए. और क्या है? टू रियलाइज दी हमको अपने आप को जानना चाहिए और भगवान को जानना चाहिए, यही जीवन के एकमात्र लक्ष्य. इस मिशन के लिए सभी मिलकर के काम करना चाहिए. जो सब मिलकर काम करते हैं वो आश्रम ही, आश्रम ही ठीक है. तो आजकल लेकिन हम लोग फंस जाते, नहीं वो तो मंदिर बनाते डिवोटी, उनका है काम, हमारा थोड़ी काम. हम तो व्यस्त है, और फिर तो अब इंडिया में नहीं रहते, हम तो मिडिल ईस्ट में रहने लगे. और गए क्यों? मिडिल ईस्ट जाने का था इसलिए आए. यस, मैं कमाने के लिए, और क्या है, वहाँ अखट पड़ा है, कम पड़ा, वहाँ जाए. तो वही मिशन ऑफ लाइफ बन गया. इसी प्रकार बोलते हैं ये अनर्थ है. हम जो धन आदि कमाते हैं वो किस काम के लिए आता है? शरीर की सेवा के लिए. हम लोग केवल आजकल इस आधुनिक सभ्यता में केवल शरीर को ही हम मानते हैं, हमारा अपना परिचय है. जब कि पूछा हु आर यू, तुरंत हम आईडी कार्ड दिखा देते हैं, बायोमेट्रिक बना करके लाए, अपना आईडी दिखाते हैं, अपनी फोटो दिखा देते हैं. अगर सच में आपको पूछा जाए ये फोटो क्या आपके परिचय है, दिस इज रियल योर आईडी? क्योंकि ये जो फोटो अभी दिखाते हैं पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, आगे कुछ और भी हो जाएगा, परिवर्तन होता ना तरह. लेकिन आप अपरिवर्तन नहीं, आप चेंज नहीं. ये छोटे बच्चे हैं अभी 8-10 साल के हैं, उनको अपने माता पिता ने बुलाते हैं, उनका नाम ले करके हरी जा रही है. तो अगर वो 80 साल की भी हो जाए वही बोलेंगे, उनके लिए वही. यद्यपि शरीर बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, फोटो देखो बिल्कुल नहीं, लेकिन वही है. तो फिर तो हमारा जो असली परिचय हम दिखाते हैं कि नाम और फोटो दिखाते हैं वो किसका परिचय है?
शरीर का
परिचय. और शरीर क्या है? नहीं, हमारा शरीर क्या, शरीर के साथ क्या हमारा संपर्क है? कवर, शास्त्र में कहा गया ये पोशाक है, पैकेट है, उसे पैकेज। आप बाजार में खरीदने के जाएंगे कोई चीज, आजकल नया मोबाइल निकला है, आप इतने हाई कीमत दे करके खरीदने गए, अब देखे i7 आजकल निकला है, तो उसको इतने पैसा खरीदे, आपको देखा बड़ा बहुत पसंद किया आपने, तो उसको पैकिंग बढ़िया से किया, पैकेट ले घर में आए, आदमी देखो पैकेट लेके खुश हो गए, मैं लेकर आया, पैकेट खोल के देखे उसे माल ही नहीं, केवल पैकेट दे दिया उन्होंने, तो खुश होंगे आपने, जाकर हमला करेंगे। तो वो भी अगर पूरे पैकेट उछेंगे, दूसरा एक बढ़िया कवर से पैकिंग करें, गोल्डन पैकेट में दे दे, फिर लेकर आ जाए। तो हम लोग की संसार में वर्तमान स्थिति में केवल इस पैकेट के ऊपर में कंसर्न है, उसी को कैसे टेक केयर करें, कैसे करें। ये समाज में जितने एजुकेशन है, जितने काम है, जो कुछ अचीवमेंट है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस कवर, इस बाहरी चाकचक बाहर के लिए। We are all concerned for our body and flesh only, है ना, इसके लिए सो काम करते हैं। लेकिन सचमुच देखा जाए तो हम इस शरीर नहीं, शरीर से परे और कुछ, क्योंकि अगर हम शरीर के हर अंग पर अंगी रखकर पूछें ये क्या है, ये मेरा सर है, आप सर हो क्या, ये मेरा हाथ है, हम हाथ है क्या, तो शरीर के हर अंग में हाथ लंगुली लाकर पूछो, तो बोले मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तुम दो अरे दे आप कौन हो, तो शरीर है नहीं, वो शरीर के अंदर आप और कुछ हो जिसको आप अभी तक जानते हैं। अब माल अंदर क्या है उसको पता ही नहीं, केवल पैकेट लेकर हम खुश हो रहे, केवल पैकेट लेकर खुश हो, ये अच्छा है ना बुरा है? और एक बात बताऊँ आपको, कभी कभी आप ट्रैवलिंग करते होंगे, जैसे आपके बाजू में और कोई बैठा है, आप देखो एक लड़का बैठे तो उनको पूछेंगे भाई साहब एक बात पूछूं, ना क्या बोलिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, सब लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा सुनकर? दूसरे भैया तो कहाँ उतरेंगे आप, ठीक है कुछ नहीं के बाद, जहाँ सब उतरेंगे मैं उतर जाऊँगा, जब ट्रेन रुकेगा सब उतरेंगे मैं उतर जाऊँगा, और आप तीसरा प्रश्न नहीं करेंगे, दो ही क्वेश्चन में आप क्या समझ लेंगे, ये तो मेंटल है ना, ठीक इसी प्रकार अगर हम सबको पूछा जाए, आप अपने को पूछो, हम पूछते हैं आपको कि माता जी प्रभु जी कृपा करके मुझे ये बताएंगे आप क्यों जी रहे हैं, जी क्यों रहे हैं, अरे बीबी तब बस क्या उत्तर है, कोई उत्तर है, कितनी बुद्धि लगाकर बोलो, इतना ही बोल पाएंगे जो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट सुपर एजुकेशनल लिटरेट पर्सन, उनको अगर पूछो बोले ये कोई पूछने की बात है, मैं कितने एग्जाम कितने इंटरव्यू फेस करके ये क्वेश्चन को पूछे ही नहीं था, ये कोई पूछने का, सारे दुनिया सब लोग जी रहे हम जी रहे किसी जी रहे, एक पूछने के बाद एक कहेंगे ना, ये जो पहले का प्रश्न पूछा उससे तालमेल कीजिए, भैया हस्ट सब जी रहे हम जी रहे लेकिन कब तक जिएंगे, एक पूछने का, जब मरेंगे तब तक जिएंगे, है ना, अब जो दो प्रश्नों पहले पूछा था जो कंसीडर किए पागल है, अगर हमको पूछे हम क्या है कोरे पागल, पता ही नहीं हम क्यों जी रहे हैं और कब तक नो, है ना, अभी आप मिडिल ईस्ट से यात्रा करके आए, और यात्रा के लिए पता होगा कितने महीने से सर तोड़ते होंगे जो आपके मैनेजिंग पार्टी है, कितने महीना पहले से प्लानिंग करते, कितने मेल लिखना, कितने क्या क्या करना, टूर अपडेट, सो मेनी थिंग्स पहले पहले किए, और यहाँ तक करने जाता तभी होता है कि हम जाएंगे, जाकर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कब आएंगे, रिटर्न कंफर्म नहीं होने से तब तक यात्रा सुन नहीं करते ना, एवरीथिंग इज प्री अरेंज्ड परफेक्टली। कोई भी यात्रा करो, जहाँ पहुँचेंगे हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ हर विच प्लेस विल स्टे एंड व्हाट विल डू व्हाट विल ईट एवरीथिंग सब पक्का करके तो फिर निकलते जाते हैं। तो ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं जीवन ये एक यात्रा है ये भी ये यात्रा जिसे आपका यात्रा शुरू किए सरजा से और यहाँ तक ये जो यात्रा है कहाँ से शुरू होता है जन्म से जन्म से यात्रा शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा गाड़ी कहाँ तक बन कर जाएगा बस उसके आगे बढ़ेगा नहीं एंड वहीं पे जैसे कभी गाड़ी बन कर जाता ना पूरी हावड़ा एक्सप्रेस यहीं से यहीं तक जाएगा दर्श सब यहीं से बन करके चलेगा और वहीं तक ही जाएगा तो इसलिए जो गाड़ी में हम सवार कर रहे हैं अभी वो गाड़ी की कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा लास्ट डेस्टिनेशन वहीं स्टेशन हमको पता है किसी को नहीं पता है पता ना सब ये गाड़ी ही रुकेगा करके और ऐसी गाड़ी में हम चढ़ के यात्रा करें अभी लगभग आधा आधी से यात्रा कर चुके हैं ना आधे कि पता है कि अब जो लास्ट स्टेशन आएगा हम जो उतरेंगे कौन रिसीव करेगा किसी को पता है कोई अरेंजमेंट किया अपने किया जानते हैं गाड़ी तो रुकेगा पता है ना सबको लास्ट स्टॉपेज तो वही है तो लास्ट स्टॉपेज में हम जो पहुँचेंगे हम कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे क्या करेंगे किसी ने कुछ सोचा और यात्रा कर ले किसी कितने कोरी मोर पता है देखिए अब यात्रा शुरू करते हैं पता नहीं कि मैं हम गोइंग अब ये भी पता है कहाँ जा रहा हूँ गाड़ी तो उसके आगे और एक इंच भी नहीं बढ़ेगा तो तभी मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा या उतरूँगा या क्या करूँगा कौन मुझे लेगा क्यों जाऊँगा कोई प्लानिंग नहीं और 50% यात्रा कर चुके हैं उससे ज़्यादा भी कर चुके हैं सोचने के लायक बात है ना कम से कम अभी तो फोन करो भाई अगर भूल गया अगर पता नहीं है प्लीज अगर कमेंट टू रिसीव नहीं ना बोलेंगे नहीं क्यों फोन करूँ भाई मैं टिकट किया हूँ फर्स्ट क्लास एसी का टिकट किया हूँ मैं तो बैठा अब गाड़ी जाकर लास्ट बजे पहुँच जाएगा आप बोलेंगे हम तो नहीं उतरेंगे बैठे रहेंगे गाड़ी में अगर वो गाड़ी से नहीं उतरेंगे बैठेंगे तो क्या होगा नहीं फिर आपको रिसीव करने के लिए आपका तो कोई लोग है नहीं किसी फोन किए नहीं रिसीव करने वाले लेकिन कोई आएंगे रिसीव करने आप ही आएंगे रेलवे पुलिस फोर्स बोलेंगे चलिए आपको रिसीव करना नहीं है तो फिर चलिए हम लेते हैं कहाँ ले जाएंगे नहीं बार प्लेस ऑफ कृष्ण हाँ कृष्ण ड्यूटी है ना कृष्ण जन्म स्थान में ले जाते हैं चलिए इस प्रकार की गाड़ी में आप बैठे रहेंगे बोले नहीं मैं इतनी ये करके रह जाऊँ इसे की व्यवस्था क्या हूँ मैं किसी यहाँ से जाऊँगा अरे भैया स्टेशन आ चुका है लास्ट अभी तो उतरना ही आप नहीं उतरना चाहेंगे छोड़ देंगे आप वो पुलिस पुलिस जमराज के आएंगे वहाँ कर ले जाएंगे ना मान के चलो कहाँ ले जाएंगे नरक में ये उनका पास जेल नहीं होगी उनका नरक खींच कर ले जाएंगे आप असहाय कुछ कर ही नहीं सकते तो यही बात है अगर अभी करना तो चाहे तो यात्रा शुरू करने से पहले व्यवस्था यात्रा शुरू करने से व्यवस्था क्या सोचे नहीं पता है कि यात्रा एंड होगा लेकिन फिर भी कुछ हम नहीं किए अभी इतनी यात्रा कर चुके अभी भी तो कम से कम करो फोन करो भाई मिस्टेक हो गया अभी से कर दो मैं डबल रेट दे दूंगा कुछ करूँगा डू समथिंग ना कह रहे क्या करें अभी भी नहीं करना चाहते यही संदेश भागवत देता है कि कम से कम इस बात को समझ लो कि यात्रा इज गोइंग टू एंड वेरी सून इज गोइंग सो देन व्हाट अरेंजमेंट्स यू हैव डन व्हाट टू गो व्हाट टू ईट व्हाट टू स्लीप व्हाट टू स्टे कुछ कर लेना यही मिशन ऑफ लाइफ होना चाहिए हाई वी आर लिविंग मुझे पहले उत्तर पूछा हम क्यों जी रहे हैं इसी का उत्तर किसी के पास नहीं सब जी रहे हम जी रहे नहीं इस आश्रम तटे इसी के लिए सम्यप्रास सरस्वती नदी बदरी का आश्रम है बदरी बैर पेड़ को बदरी कहते हैं बदरी सलने इसी का दूसरे वर्ष में ही कहते हैं उस क्षेत्र में श्री व्यासदेव भगवत अवतार इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं चिंतित रह करके उन्होंने अनेक शास्त्र और पुराण खूब रचना किए थे लोक कल्याण की लेकिन ये सब करने के बावजूद स्वयं दुखी हैं बैठे क्या इसमें तो कुछ बना नहीं होता तो इसको वो चिंता करते हैं सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके कई आश्रम तट में बैठ करके सोच कर रहे हैं कि क्या किया जाए। मैं इतना सारे महाभारत वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद सब दिया, लेकिन लोगों को क्या कल्याण होगा? मेरा ही कल्याण नहीं हुआ अभी तक। मैं पूरा जीवन धर्म से आचरण से संयम से सब जिया, लेकिन फिर भी हुए आई एम नॉट गेटिंग पीस ऑफ माइंड। स्वयं वासुदेव उस आश्रम के अधिकारी जो सरस्वती नदी के प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो प्लेस ब्रह्मनद्या सरस्वत्या आश्रम में पश्चिमी तटे, प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में लिखते हैं कि अगर हम लोग को कुछ ज्ञान प्राप्ति करना होगा तो एक निश्चित क्षेत्र चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर प्राप्त किया जा सके। ऐसे मेन रोड में बीच बाजार मार्केट के बीच में खड़े होकर मॉल के अंदर रियलाइजेशन ज्ञान नहीं होगा नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर परिवेश चाहिए, स्थान चाहिए, वातावरण चाहिए। तो ये वातावरण कितना शांत वातावरण, और तो इसलिए व्यासदेव ने वहाँ का आश्रम बना के बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस प्योर एटमोस्फियर। तो सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट पर उनका आश्रम बना कर ये सोच में थे कि क्या किया जाए। जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने के लिए लोग भूल गए, कोई नहीं प्रयास करते। पूरी प्रयास जो पढ़ाई लिखाई करके जो शक्ति सामर्थ्य बुद्धि है केवल एक शारीरिक सजावट में लगे हैं, वो इस शारीरिक खुश के लिए केवल इस उसको बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलो, उसी केवल ढकने कवर को तैयार करने में लगे हैं। बॉडी कंफर्ट्स उसमें लगे हैं, कोई उसका अंदर के चीज़ के बारे में कोई सोचते भी नहीं। तो ये सोच ये जो विचार की व्यवस्था केवल मनुष्य शरीर में रखा गया, जितने प्रकार के शरीर और है 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर है, केवल मनुष्य शरीर को छोड़कर बाकी जितने शरीर वाले ये प्रश्न कोई पूछेंगे? ऐसे क्लास में कोई कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी चिड़िया कोई आगे बैठेंगे? नहीं, मनुष्य। मनुष्य में भगवान ने ये स्पेशल फैसिलिटी दिए हैं मनुष्य शरीर में कि ही शुड थिंक, ही शुड एन केयर, ही शुड नो एंड ही शुड डू। ये व्यवस्था मनुष्य इतने फैसिलिटी दिए हैं। अब देखो कोई किसी को कोई विशेष फैसिलिटी ज़्यादा देता है तो उसका क्यों फैसिलिटी देता है? कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कुछ काम इसमें निकालेगा तभी ना। आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, एक ऑफिसर होता है उसको बहुत हाई पेमेंट दे करके गाड़ी फ्लैट बंगला सब दे करके रखा है, और इसमें कोई एक क्लर्क भी काम करता है, कॉपियर भी काम करता है, बेचारा कुछ नहीं साइकिल में आता है काम कर जाता है, सेम ऑफिस में काम करता है। क्यों? वो भी तो इतना काम करता है, बेचारा परिश्रम करता है, उनको इतना कम फैसिलिटी है, उनको इतना हाई फैसिलिटी है, क्योंकि वो जानते हैं वो जो हाई फैसिलिटी देते हैं उनका पीछे दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, इसके लिए देते हैं जिम्मेदारी। तो हमको जब भगवान ने इतने फैसिलिटी दिए हैं, व्यवस्था दिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी तो है ना। क्या जिम्मेदारी है हम समझे नहीं समझते? वही कुत्ता बिल्ली की तरह करते हैं काम, वही खान पान, वही शरीर उपभोग, वही सेंस, वही तो करते हैं। तो फिर फैसिलिटी छीन लिया जाएगा ना। आप कंपनी की तरफ से कार मिला है यूज करने का, आप उसे रख करके डेली 3 बार उसे धो के चकाचक करके साफ करके रखें कर, तो आपको कंपनी कार रखेगा छीन लेंगे? यूजलेस। आपने दिया किसी को करता क्या है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे एक पिताजी थे, वो अपने पुत्र को बोले देखो बेटा ये 100 रुपया ले लो, अभी इस्कन के प्रीचिंग बस आया हुआ है, एक भगवत गीता खरीद के लाओ, डिस्काउंट रेट में है, अभी दिसंबर है, डिस्काउंट में है, 100 रुपये में तो लेकर आओ पढ़ेंगे। तो बेटा ने साइकिल निकाला, 100 रुपये पॉकेट में डाला, गया बाजार में, जा रहा था रास्ते में, पता नहीं गीता पिता चक्कर में पिताजी क्या पड़ गए, जा रहा था रास्ता में देखा कि एक सर्कस लगा हुआ, सर्कस जानते ना, वो पहले बोला वो तो 5 साल 10 साल के बाद आया सर्कस नया, बड़ा एडवर्टाइज हुआ है, अभी शो होने वाला ही है। तो मन में बड़ा सर्कस के बारे में विचार था, तो गया साइकिल पार्किंग में रखा, टिकट खरीदा 30 रुपया का, देखने के लिए चला गया सर। 3 घंटा का शो था, देखा, देख करके आया, तब तक तो 1 बज चुका था, भूख लग रहा है लंच टाइम, तो पास में होटल था, एक थाली अड़क दिया, सिंपल थाली था, तो 60 रुपये की मिलता है,
60 रुपये।
तो अब पास में कितना बचा?
10।
10 ही बचा, और टाइम भी दोपहर हो चुका है। तब साइकिल लेकर गया, बोले याद आ रहे पिताजी ने बोले थे, तो पिता खरीदने के लिए गाड़ी के पास जाता है, बोले प्रभु जी दे देंगे, लाओ 100 रुपये। नहीं, 10 में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और हम नहीं कर सकते। तो अभी वो हताश होकर 10 रुपये पकड़ में लेकर साइकिल वापस आएगा, उनके पिताजी उन कैसे रिसीव करेंगे, है ना? अगर आप होते तो कैसे? तो ऐसे खुशी मत हो, हम सब यही बट बेटा ही, भगवान ने हमको 100 साल जो 100 रुपये की उम्र देकर बोले कि बेटा जाओ ये करके आना, हम भूल गए, किस लिए आए हुए, फॉरगेट अवर मिशन ऑफ लाइफ। भागवत में वर्णन है, जब जीवात्मा गर्भ में रहता है, मातृ गर्भ में, कितने हमको वेलकम करते ना, इस संसार में हमको जो वेलकम किया गया, कैसे वेलकम किया गया, बड़े गेट बना करना उल्टी टांग में 9 महीने तक किसी प्रकार अवस्था में रखा गया हमारे घर। वो जो गर्भ यंत्रणा शास्त्र इतनी भयानक ट्रिबुल यंत्रणा है, उसमें जीव का पहले कई जन्म के याद आता है, तो कान पकड़ करके रोता है, माफी मांगता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, इस बार तो ये गलती कभी नहीं करूँगा, इस बार केवल आपको भजन करूँगा, प्लीज थोड़ा निकाल दीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, बहुत पुकार करता है। तो भगवान की कृपा से उनकी प्रथम तो वो निकाल देते हैं उसको, जैसे बाहर आता है भूल जाए, फिर भूल जाता है मिशन किस लिए मैं आया, भूल जाता, और खाने पीने सोने में इसमें लगता है। तो ही मैं कहता हूँ, हमको जिस काम के लिए 100 साल की उम्र देकर भेजा गया, हम आके सर्कस देखना, थाली खाना, वो करना, इसमें भूल गए। जब उम्र और केवल 10 साल बाकी तब ही आता, क्योंकि दांत निकल गए, आँख निकल गया, सब निकल गया, कुछ काम नहीं कर पाते, तब बोलते हैं कि हमारा भौतिक संसार वही लोग करते हैं। जब जवानी था, काम करने के लायक थे, तब तो खूब इंद्र तृप्ति करेंगे, एंजॉय करेंगे, इधर घूमेंगे। लेकिन जब कंपनी रिटायर कर दिया, गवर्नमेंट भी रिटायर कर दिया, घर वाले भी रिटायर कर दिए, ओल्ड एज होम में डाल दिए, तब सोचते हैं प्रभु अभी आपके संग प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। अरे तो सर्विस कर ही नहीं सकते, सब रिटायर कर दिए, रिजेक्टेड, आप क्यों सर्विस करें, मेंटेन होने के लिए जा रहा है ना। तो भगवान इतने मूर्ख थोड़ी है। और हम जितने भी भौतिक संसार से व्यक्ति है, हमारे अंदर एक चीज तो बहुत परिमाण में है, क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, खचाखच भरा हुआ है चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी समझते ना, धोखा देने का प्रवृत्ति, चांस मिलते ठग देंगे, और कोई दुनिया में ठगने के लिए मिलते नहीं, सब तो चौकाने एक दूसरे से ठग है, तो इसलिए हम ठग नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा ठगते किसी को मालूम, भगवान, हाँ भगवान पूरी तरह से ठगते। आप लोग उसको ब्राह्मण होंगे, पूजा पूछी अभी गए थे, कल कम पूजा करते हैं, आपका बेटा का शादी होगा तो उनके लिए ड्रेस खरीदने जाएंगे, अरे कम से कम 5,000 रुपये का कीमत की मीटर के कपड़ा लाएंगे, है ना, बोले दे दो, अब एक बार तो करना है शादी से पहले। और फिर याद होगा अपनी पत्नी ने बुला रही हो, पंडित जी आए थे ना, उन्हें देख कर गए थे कुश्ती में, लेकिन थोड़ा सत्यनारायण पूजा भी करना है, कुछ कुश्ती में कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, तो लिस्ट ने, हाँ लिस्ट दी है, क्या लेना, उनके लिए कपड़ा चाहिए सत्यनारायण पूजा के लिए भी, एक कपड़ा चाहिए 2 मीटर का, तो ठीक है अभी ठाकुर जी के लिए कपड़ा चाहिए, पूजा कपड़ा दे दो। तो दुकानदार सोचा कि बेटे के लिए 5,000 मीटर ले लें, ठाकुर जी के लिए तो और ज़्यादा होना चाहिए। तो जो कपड़ा कीमत वाला निकाला, बोले अरे ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए चाहिए सत्यनारायण, हाँ इसीलिए तुम पा ले, कब से दुकानदार है तुम, पता नहीं, भगवान के लिए चाहिए, भगवान के लिए, अरे भगवान के लिए तो 8.5 रुपये वाला मार्किन कपड़ा चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, हाँ तुम्हारे पास है नहीं, तो जाएगा रोड के साइड में जो है ना छोटी दुकान होता है फुटपाथ से, वहां से खरीदेगा कपड़ा। तो बोलेंगे और सुपारी चाहिए, सुपारी होता तो भी यार खरीदने के लिए सबसे रिजेक्टेड माल जो है वो बोलेगा भगवान के लिए, अच्छे से कभी नहीं खुले। अब जा करके पूजा जब शुरू होगा सत्यनारायण धर्म पूजा और पंडित बैठेगा तो भगवान को स्थापन कर दिया, कल स्थापन किया, पूजा किया, आवाहन संस्थापन संविधान सब कर दिया, ना अभी आसन वस्त्र वस्त्र लाए कपड़ा ली, हाँ हाँ लाया था तो कपड़ा, अरे कहाँ पैकेट में दूंगा, क्योंकि भगवान के लिए इतने केयरफुल है, कहीं कपड़ा पड़ा है पकड़ने पता है, पता नहीं ढूंढ के मिला, चलो कोई बात नहीं 10 रुपया रखो, 10 रुपया चढ़ा देंगे तुरंत एक धागा निकालेगा, बोले वस्त्राभाव सूत्र क्या बोलेगा, वस्त्र का अभाव है इसलिए धागा में काम चलाइए, भगवान बेचारे क्या करें धागा में काम चला पंडित जी दे रहे। अगर मैं कहूँगा आपको अब गए थे अभी स्नान करने के लिए गमछा भूल गए लाने के लिए, तो कोई बात नहीं वस्त्र अभाव सूत्र में देते धागा में काम चला लेते हैं, चलाएंगे और नहीं सर हमारा काम नहीं चले, ठगने के काम चला, तो ठगने के लिए हमको कोई नहीं मिला, भगवान बेचारे कुछ बोलते नहीं ना, तो इसलिए बुरी तरह से ठगते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि हम जो भगवान को ठगते हैं, भगवान को नहीं ठगते, किसको ठगते हैं, स्वयं को ठगते, स्वयं को ठगते हैं। सारा जिंदगी मस्ती किया आपने, मस्ती करके रहा, अब जब रिजेक्टेड हो गया हर प्रकार से, तब आकर बोलते हैं वार्धक है एक हना उपाय विहीन, अब वार्धक का कोई उपाय नहीं, कोई नहीं पूछते मुझे, आपने स्वयं बेटा बेटी भी नहीं पूछेंगे, बोले बोल लो जो जाओ आई आर डिस्टर्बिंग अस, ऐसे बोलेंगे आप, पड़े रहेंगे खूं खूं कासते रहेंगे, वो आपके घर वालों को बुढ़ा मत क्यों नहीं जाता पता नहीं, उसके रात में सोने भी नहीं देता, इस प्रकार के ट्रीटमेंट होगा हमारे साथ सरकार, तो तभी हम फिर हताश होकर जाएंगे भगवान के पास, और जब हमारे पास शक्ति सामर्थ्य था तो नहीं जाता, तो इसी के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये ज्ञान के अभाव में हम इस प्रकार करते हैं, तो इसलिए भागवत महापुराण की रचना किया गया है, श्री व्यासदेव जी ने भागवत की जहाँ रचना हुआ था, जहाँ पर भागवत का कंपाइलेशन हुआ था, जहाँ पर भागवत की भित्ति भूमि है, उसका आभास है, वही क्षेत्र है शिवदे का आश्रम, जहाँ पर व्यासदेव जी सच में बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे, तो उनके गुरुजी से नारद जी पधारते हैं, पधार करके उनका जो बातचीत होता है, वो पूछते हैं कि बोले कि तू जीवन में एक काम नहीं किया, भगवान की भक्ति के वर्णन नहीं किया जो करना चाहिए था, इसीलिए शांति है, तो व्यासदेव ने अपने पूरे ध्यान में बैठ करके भगवान को दर्शन करते हैं और भागवत को लिखते हैं, तो भागवत की रचना वही समय अप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बद्रिका क्षेत्र में बद्रिका आश्रम में हुआ, इसी बद्रिका आश्रम का अनेक और भी लीला है, लेकिन ये मुख्यतः हमारे लिए बड़े उपादेय है, क्योंकि हमारा जीवन की जो मिशन है, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, वो जिसके लिए हम अज्ञा होकर मूर्ख की तरह मरते हैं, तो उसी को जानकार देने के लिए श्री व्यासदेव जी ने इतने बड़े कदम उठाए, इस क्षेत्र में बैठ कर के श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, जो कि जीवन के मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में सफिशियंट इंफॉर्मेशन देता है, व्हाट शुड वी डू, व्हाई शुड वी डू, हु वी आर, ये सब जो इंफॉर्मेशन वहीं से प्राप्त हो जाए भागवत से, तो इंफॉर्मेशन का संकलन उसी क्षेत्र में किया गया था श्री व्यास ने किया, तो वो जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य है जिसको प्रभुपाद ने जैसे कॉमन मिशन फॉर ऑल आश्रमस, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भगवान को जानना, जीवन के लक्ष्य ही होना चाहिए, टू रियलाइज दी सेल्फ, रियलाइज दी गॉड, ये जानना चाहिए, और इसी को छोड़ करके ये रियलाइज छोड़ करके बाकी आप रियलाइज करते रहते हैं, काला में आपको यात्रा के रियलाइजेशन क्या है, अरे रियलाइजेशन आपका ही तो बोलो क्या है, कितनी बुरी स्थिति में हम पड़े हैं, तो ये हमको दोबारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमें बताने के लिए अपनी स्थिति भागवत महापुराण है, जो सारे जीव के कल्याण के लिए, सारे के हित के लिए, तो इस परोपकार के जो काम, किसी ने मुझे आपके टूर में बोल बोले थे कि अगर वो माता जी है ना नहीं Thank you. कर लिया माता जी, कल परसों मुझे पूछ रहे थे कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जमींदारी से जिए और ईमानदारी से जिए और सबके भला करें, किसी को बुरा ना सोचे, तो इज नॉट दैट सफिशेंट? उनका मन, अच्छा प्राय लोगों के मन में प्रश्न, प्राय लोगों के मन में कि इतना कि ठीक नहीं, हम जीवन जीते हैं ईमानदारी से और ऐसे करते हैं, लेकिन जो है नहीं, मैं उन्हीं के लिए बोलना चाह रहा था, चलो जब रहेंगे तब कट करेंगे, है उनको समझना चाहिए। मैं उनको बता था, मैंने आपको, आप जो कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है जिम्मेदारी क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है? ये नहीं, आप बोलते हैं दूसरे की भलाई करें, क्या दूसरे की भलाई करें पता है? वो नाव से कमी है, वी आर लेट। तो व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारी जिम्मेदारी है और क्या दूसरे की भलाई करें? मैं उस दिन किसी को बता रहा था, हमारे गाड़ी में आ रहे थे, मैं बोला सब कुछ सुनना चाहिए, हम सब दूसरे का भलाई करना चाहते हैं, कैसी भलाई करना चाहते हैं? एक गुजराती माता जी मुझे पूछ रही थी, हम तो चाहते हैं कि हम तो अर्थनेज में जाते हैं, अर्थनेज अनाथ आश्रम जाते हैं, उनको देख करके बड़े अमर दया होता है, उनको देते हैं, क्या देते हैं मेरे परोपकार, क्या करते हैं, खाना देते हैं, कभी कभी कपड़ा देते हैं, कभी कभी मेडिसिन देते हैं उनको, और कभी कभी बूढ़े आदमी ओल्ड एज होम में बेचारे बैठे हैं, कोई उनके माँ बेटा बेटी पूछते हैं तो जाकर उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, यही तो परोपकार है ना, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। दैट ऑल यू कैन डू, ठीक है, यह अच्छी बात है, लेकिन किसको भोजन देना, कितनी बार भोजन दे सकते हैं आप? हम प्रत्येक जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, दिन में तीन बार से ज्यादा तम भूखी भूखा होते हैं एवरी डे, है ना? अब एक आध दो बार कोई दे दे तो कोई काम चलेगा, हम कैसे मिलते, कपड़ा भी हमेशा बनते रहते हैं, एक बार कोई दे दे कोई बीमारी तो होते ही रहते हैं, एक बार कोई दवाई दे दे कोई टैबलेट होगी एक्सपायरी हो जाएगा, रहेगा नहीं, कैसे काम चलेगा, क्या हेल्प कर सकते थे? वास्तविक परोपकार क्या है हमको पता ही नहीं। तो मैं कहानी उनको बता रहा था कि जैसे आप यात्रा में आए हैं, अगर किसी का रख लें बाद में करते हैं, अभी वो जाने का समय सब डिस्टर्ब है, तो बट आवर प्रशंसा रही हरे कृष्ण। तो मैं कहानी बता रहा था कि जिसे आप लोग भी यात्रा में आए, हम तो मिडिल ईस्ट में है, वहाँ से आए, ये जगह बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल प्लेस नया है, भाषा नया है, एकदम सब कुछ, यहाँ आकर यात्रा में घूमते, कई जगह पर ऊपर गए, नीचे आए, पहाड़ में चढ़ते, तो किसी का एक लड़का वो हो गया, कहीं चला गया पेशाब करने, निकल गया, अब चले गए पता नहीं, अब यहाँ जाकर पहुँच कर ढूंढते है नहीं, हो सकता ना ऐसे होता है, गुम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत दुखी हुए, पुलिस में इंक्वायरी किए, रिपोर्ट किए, जो जो करना था कि मिला नहीं लगता था, तो यहाँ तो फोन नेटवर्क ऐसे नहीं लगता, तो दुखी होकर गए वापस, का फ्लाइट बुकिंग था, चले गए, बड़े दुखी रहे, कहाँ गया बेटा, गुम हो गया। तो किसी ने आपके रिलेटिव आए था इस क्षेत्र में और वो बेटा को देखा, तो दुखी था, तुम उसका, हाँ क्या हो गया, खाया है, भूख उसको बुला कर लिया, अच्छा होटल में बैठा, बड़ा बड़ा जो मर्जी खाओ, खूब खिलाया पेट भर के, आप पेमेंट किया चला गया, बड़ा दया के उनको खिला, खुश हो गया। तो कुछ दिन के बाद एक बार खाने से तो फूल लिखने गया, दूसरे कोई आया था आपको परिचित व्यक्ति, वो मिला सेकंड पर्सन, अभी लड़का बैठक में क्या ना ठंडी है, वस्त्र नहीं मेरे पास, ठंडी में टूट रहा है, तो उनको बुला के ले गया और बहुत दुकान से हाई क्वालिटी उलन गार्मेंट्स खरीद के पूरा कपड़ा से वस्त्र दे दिया, उनको पहनने के लिए वस्त्र दिया, कवरिंग करने के लिए वस्त्र दिया, गर्म कपड़ा दिया, दे करके आप उनको उपकार किया, उनका अच्छा किया। तीसरे एक आपको पहचान के व्यक्ति उनको मिला, वो भी बोला क्यों अरे तेज बुखार है, बीमार हो लेकर, तो वो भी दया करने के लिए उनको ले जाएगा, लेकर के हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, जो डॉक्टर से कंसल्ट करा के मेडिसिन सब दे दिया, लेकर चला गया। आप में से कोई और चौथा व्यक्ति एक बार आया था, उनको मिला, उनको देखा इस अवस्था में, क्योंकि एक बार कोई खिला देने से तो भूख मिट नहीं जाता, एक बार पहना देने से, एक बार दवाई देने से, वो भी देखा बेचारा भटक रहा है, दर्द दुखी है, तो उनको बुलाया, बुलाया तू ही है ना, तो वो व्यक्ति ने चौथा व्यक्ति ने ना तो उसको खाने के लिए कुछ दिया, पहनने के लिए ना कुछ दिया, ना व्यवहार था दवाई पहने दे, वो सीधा फोन निकाला लगाया, हेलो हाँ जी ये देखिए भटक सर, इतना ही किया। तो अभी आप बताइए जो चार व्यक्ति उस लड़के से मिले, सबसे अच्छा उपकार कौन किया? तो कुछ भी नहीं दिया उसको, रोटी भी नहीं दिया, अभी नहीं दिया, अभी मेडिसिन भी कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हम आते ना सबसे अच्छा काम वही किया, वही बात। तो परोपकार क्या है आपको समझना चाहिए, परोपकार नहीं कुछ थोड़ा खाना दे देना, कुछ वस्त्र दे देना, कोई दवाई पानी दे देना, थोड़ा मीठा मीठा बात कर लेना, ये उपकार नहीं। ये कब तक आप करेंगे? एक बार अगर कनेक्ट कर देंगे उनको उनके साथ, सदा के लिए उनका उपकृत हो जाएगा, वही वास्तविक। तो यही उपकार इस जो हरे कृष्ण संस्था कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, ये हमारा जो संस्था के जो लक्ष्य है, प्रचार, क्या प्रचार करते हैं हम लोग, बोलते हैं तू भटका हुआ है, दुखी, इसलिए तू दुखी हो, जो पता नहीं कौन है आपके माता पिता कौन है, लो सीधा जो नंबर है भगवान के, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो डायल टोन करके लगा लेते हैं, तो कहा भटक रहा है, तो उनसे बात कर लो। तो एक बार दादी मम्मी से बातचीत हो गया, परिचित हो गया, जान गए, तो आपके सदा के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो हम क्या कर सकते। ये है असली केवल थोड़ा कभी दे करके हमसे हम क्या दे पाएंगे। मैं एक सत्य घटना बता रहा था, जयपुर में राजस्थान में गोविंद जी मंदिर के सामने यहाँ बहुत बड़े सेठ थे, उनका मन में कहीं से कोई बताया कि भोजन दो, तो उन्होंने बड़े रिच पर्सन थे, तो उन्होंने एक अन्न छत्र किया, अन्न छत्र जानते ना, जहाँ फुल भोजन दिया जाता है, राइस रोटी दाल सब्जी कढ़ी डेली दो टाइम देने लगे। शुरू हुआ अड़ताली झगड़ा कर दिए, तो इतने भिखारी और निखट्टू आलसी इकट्ठा हो गए, सब लोग होटल में खाए नहीं, सब आस पास होटल से बंद ही रह गया, सब आए दो टाइम चकाचक भोजन किए, लगभग 6-8 महीना तक डली थी वो, इतने शुरू तो हुए थे 10-5 लोग से, हजारों संख्या में लोग आए खाए, इतनी भीड़ पड़ गया, फ्री मिलता है अच्छा भोजन कौन आप। उनके बाद अंततः भाई खर्चा करने से तो घटता ना, बैलेंस तो कम हो गया। 8 महीने के बाद सेठ जी बोले मेरे पास बस नहीं, इतने लोग हो गए, इतने में नहीं कर सकता, तो उनको बंद ही करना पड़ा। अंततः जब बंद कर दिए, जो लोग 8 महीने से खा रहे थे ना, तो वो इतने गाली दिए उनको, बोले हमारे इतने बुरा किया हमारे साथ, हम तो अच्छा कोई रिक्शा काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कमाई कर रहे थे, ये हम गाली सी करते, अब काम छोड़कर 8 महीना तक नहीं खा रहे थे, बंद कर क्या करें, इतने उनको गाली दिए, इतने उनको अभिशाप दिए, वही मिलेगा, क्योंकि हम दे नहीं पाए ना, कभी ना तो बंद कर देंगे, बंद करने छोड़ेंगे भी मन के, मैं तो मेरा ठीक ठाक जी रहा था जैसे ठाकुर जी की इच्छा से, तू मुझे ला कर फिर क्यों नहीं सके, अब नहीं कर, तो इसलिए ये उपकार इस प्रकार करने से नहीं। लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि कोई रेडी बैठा है तो मत दो, नहीं दो, लेकिन ये कोई ऐसा मत समझो कि इससे मेरा काम चल गया, अपने गर्व मत करो ना। असली उपकार उसको होगा क्योंकि जीवन भर उनको चाहिए, तो एक बार उनको उस परमात्मा परम पिता से कंटेक्ट कराना चाहिए, मिला देना चाहिए, संबंध ज्ञान दे देना चाहिए, क्या संबंध है और वो क्या है, उनका असली उनके परिचय और क्या संबंध है, ये बता देने से तो फिर सदा करते। तो ये इस मिशन का काम है, भगवान के साथ संबंध करा देना। बाकी खाना पहनना बीमार होना ये तो शारीरिक धर्म है, ये तो रोकता ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे किसी भी हिसाब से। और डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वही खुद ही बीमार होता मर जाता है, वो भी सब क्या हम क्या करें। तो वास्तविक जो हम है, हमें शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, उनका जो आवश्यकता है हमको पता ही नहीं, केवल शरीर की आवश्यकता हम देखते हैं। ये जो खाना पहनना बीमारी ये सब किसकी जरूरत है, शरीर के लिए, ये तो ढक्कन के लिए चाहिए, कवर के लिए चाहिए, लेकिन अंदर के माल के लिए क्या चाहिए पता नहीं, अंदर माल क्या पता ही नहीं तो क्या है इनसाइड, जो है उसके लिए क्या आवश्यकता है वो पता है। इस आवश्यकता को जानना, क्या चीज है अंदर, उनको क्या आवश्यकता है, उसी को जानना समझना, उसके लिए प्यार करना, ये भागवत का संदेश है, भागवत की शिक्षा। तो इसी के लिए भगवान के अवतार व्यासदेव ने इस स्थान में विशेष करके ब्रह्म नद्या सरस्वत्या पश्चिमी तटे, इस सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर आश्रम पश्चिमी तटे उस आश्रम बना करके इस भागवत को रचना किए थे, जिनके ही उद्देश्य है। तो विशेष करके हम लोग जो ये इस्कन के भक्तगण सोसाइटी के प्रभुपाद जी के विशेष देन है, प्रभुपाद जी शुरू किए मूवमेंट, उनके पास कुछ नहीं था, केवल भागवत की प्रथम स्कंद के 3 वॉल्यूम में बड़े मुश्किल से ट्रांसलेशन कर पाए थे, उसी के दौरान उसी के चलते पूरे विश्व में लाखों लाखों लोग का जो उपकृत होते हैं उस ज्ञान का। तो इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक दुख का कारण क्या है, अरे द रियल काज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सफरिंग, यू नो इग्नोरेंस इज द ओनली काज ऑफ सफरिंग, इग्नोरेंस अज्ञानता, हम पता ही नहीं, इस दिन पता हो जाए एक बार दैट्स इट। तो इसलिए ज्ञान देना है वास्तविक परोपकार, ज्ञान सबसे बड़ा परोपकार, इससे आपकी इटर्नल बेनिफिट होगा सदा के लिए। तो ये जो ज्ञान के दाम श्री व्यासदेव जी ने रचना किए थे, विदन किए थे, जिसको हम लोग पढ़ के समझ रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, वो वही क्षेत्र है बद्री का क्षेत्र। उस क्षेत्र में भगवान नर नारायण की प्रकट हुआ था, उन्होंने सत्ययुग के युग धर्म तपस्या ही आचरण किए थे, उसके बारे में और यहाँ चर्चा करेंगे। उस पवित्र क्षेत्र भगवान की भगवदीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में व्यासदेव भगवान अनेक ऋषि मुनियों को इकट्ठा करके अपने मिशन ऑफ लाइफ के बारे में ट्रेंड अप कर रहे हैं, यही शिक्षा दे रहे हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड आश्रम। सब मिल करके एक साथ में भगवत प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, जिस घर में जहाँ जिस स्थान पे सभी जो रहने वाले मिल करके एक ही पर्पस, कॉमन पर्पस, हाउ टू रियलाइज गॉड, इसके लिए अगर काम करेंगे तो वही आश्रम। तो इस प्रकार हम ये आश्रम के जाने के लिए भी इच्छुक हैं, वही बद्री का आश्रम संपूर्ण विश्व में एक ही जगह है जहाँ पर व्यासावतार भगवान स्वयं इस ज्ञान की रचना किए थे संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए। हम जितने प्रकार के कल्याण परोपकार चाहते हैं, दी टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज ये चीज है, ये बता देना, ये करो। बाकी ये शरीर है, एक दिन तो मरेगा ही, बीमारी होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको हम उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल सबको करना, लेकिन एक बार भोग लेने के बाद दोबारा नाम होगा उसकी व्यवस्था तो करना। तो ये चीज की जो ज्ञान की प्राप्ति इस बद्री क्षेत्र है जहाँ पर भगवान ने व्यवस्था किए थे, तो मैं सबको ये अनुरोध करूँगा इस क्षेत्र में जा करके आप थोड़े समय के लिए ये कवर के बारे में थोड़ा सा भूल जाइए, केवल माल के बारे में सोचिए, है ना, माल के बारे में सोचिए कि आप पहुँचते ही तुरंत एक दिन आएगा जो फास्टिंग डे होगा काली, तो कल आप फिर कवर के बारे में मत सोचिए, ये जो डालते हैं 3 बार 4 बार उनका मन कर लिया ना अंदर दिमाग में उनको क्या दूध चाहिए क्या खाना चाहिए उसको सोचिए कम से कम एक दिन इसको बंद करके है ना तब आपके बहुत बड़ा अभिज्ञता होगा बिल्ला इसमें होगा वो थोड़ी प्राप्ति होगा श्री बद्रिकाश्रम की
जय
श्री व्यासदेव जी की
जय
श्री नर नारायण भगवान की
जय
समेत भक्त वृंद की
जय
श्री प्रभुपाद की
जय
महाराज एक प्रश्न था कि सबसे पहले तो आपने बहुत क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से हमें बताया कि रियल परोपकार क्या है तो बहुत क्लियर है नो डाउट इन दैट लेकिन मेरा कुछ समय पहले किस व्यक्ति से एक चर्चा हो रही थी तो उसमें मैं भी ये परोपकार के बारे में बात कर रहा था तो मैं भी उनको बता रहा था किसी को हरे कृष्ण महामंत्र देना ही नो उनको भक्ति मिलाना सबसे बड़ा परोपकार है तभी उन्होंने मुझे एक प्रश्न उठाया कि सिद्धि भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी के अंदर सिद्धि होता है तो किसी के अंदर भूत बाधा है किसी को बहुत बीमारी है तो अपने सिद्धियों से वो उनको ठीक कर सकते हैं ये परोपकार भी बहुत जरूरी है तो उनको कैसे आंसर करना चाहिए और
बोला जैसे दवाई पानी देते हैं वो सिद्धि तो ही सिद्धि में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है एक बार ठीक कर दिया तो दोबारा ठीक नहीं होगा परमानेंट के नहीं होगा सिद्धि के बारे में प्रभुपाद जी ने एक बार छोटी कहानी बताता हूँ एक बार प्रभुपाद जी ने जो 1977 में कुंभ मेला हुआ था इलाहाबाद में कुंभ होता ना बहुत लोग वहाँ लाखों संत विभिन्न जगह से आते हैं अलग अलग प्रकार के संत आते हैं तो प्रभुपाद जी ने अपने कुछ 50 करीब विदेशी शिष्यों के साथ जा रहे थे तो वहाँ गंगा जमुना के संगम में होता है तो गंगा पार करके जाना होता है कुंभ क्षेत्र में तो इस समय और एक सिद्ध बाबा आए थे हिमालय से सिद्धि था उनकी जटाजूट था उनके पीछे सब लोग चले थे उनके पास सिद्धि था और प्रभुपाद जी का नौका बुकिंग किए गंगा पार करके चले जाना था वो नौका बुकिंग नहीं किया और बोला मैं पानी में चल के जाऊँ और गंगा जी में चल के चला चल के गया सारे उनके लोग जो थे इतनी जयकार की आ करके बोली क्या ये अंतर जाती संत बोलते हैं देखो नौका में चढ़ के जाते हैं हमारा बाबा जी देखिए पानी में चल करके इतने उनके तो सारे प्रभुपाद जी शिष्य थे आकर बोले प्रभुपाद जी ना क्या ना हमको बड़े लज्जित करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं देखिए वो उनके गुरु जी संत थे वो तो पानी में चल करके पार करके गए हमको नौका में आना पड़ा प्रभुपाद जी बोले आई डोंट वॉन्ट टू दैट फूल आई स्पेंड माई लाइफ फॉर ओनली 2 रुपीस उन्होंने पूरा उनके 60 साल की उम्र हिमालय में बैठकर तप किया क्या रिजल्ट मिला गंगा पार किया मैं भी गंगा पार किया वो भी उस पार का मैं भी उस पार मैं 2 रुपये देकर पार हुआ और उन्होंने पूरा 60 साल का लगाकर पानी में चल रहा है तो फायदा क्या मेरा भी कपड़ा गिला नहीं वहाँ का भी कपड़ा गिला नहीं हम भी 2 रुपये पार किया 2 रुपये जीवन के लिए क्या आई एम दैट फूल आई हैव स्पेंड माय होल लाइफ फॉर 2 रुपीस ये स्थिति के चक्कर में यही है क्या जीवन क्या तो अभी समय हो रहा है आप लोग क्या की मैं लोग ब्रश करके 8 बजे तक निकलना है हाँ सर ये 1 मिनट ये अमृत कुंड का जल एंथेलाइट की बोतल कहाँ है सबको थोड़ा सा लाइन में आए थोड़ा थोड़ा हाथ में मुझे किसी ने प्रभु जी ने दिए थे कल ये हाँ गोपी जन वाला प्रभु दिए हैं जो केदारनाथ जी के सामने अभी एक अमृत कंड है इस अमृत कंड का जल है सर्वश्रेष्ठ जल इसमें है
प्रभु जी महाराज आप ऐसा इसको इसके साथ ही दे सकते हैं
अमृत कुंड का जल Thank you.